آگے دیکھیے بھائی سبق. ہوا ایل مرفوع الدال علیہ المرفوعات لان التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد وما اشتمل ای اسم اشتمل علی علم الفاعلیہ ای علامت کون الاسم فاعلا وہی الضمۃ والواو والالف. گزشتہ سبق میں ہم نے مرفوعات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب کافیہ نے مرفوعات کو مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر. وجہ یہ کہ جو مرفوعات ہیں یہ کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں، جبکہ منصوبات اور مجرورات کلام میں فضلہ واقع ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک لفظ ہے عمدہ اور ایک ہے فضلہ. عمدہ اور فضلہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں. عمدہ سے مراد ہے کلام کا وہ عمدہ اور اعلی حصہ جس کے بغیر کلام مکمل نہیں ہو سکتا اور جس کو بغیر دلیل کے حذف کرنا جائز نہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں کلام کے اندر، ایک مسند اور ایک مسند الیہ. مسند اور مسند الیہ ہوں گے تو کلام مکمل ہوگا، اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی حذف کر دیا جائے تو پھر کلام مکمل نہیں رہے گا بھائی، الا یہ کہ جس کو آپ نے حذف کیا ہے اس پر کوئی دلیل قائم کر دیں جس سے سننے والے کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر مبتدا، یا یوں کہیں کہ یہاں پر مسند الیہ حذف ہے یا مسند حذف ہے. اور جملہ آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کے اندر مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند بھی کو خبر بھائی، جبکہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے اور فاعل یا نائب فاعل جو ہے مسند الیہ ہوتے ہیں. تو یہ کلام کے عمدہ اور اعلی حصہ ہیں بھائی، یہ جو مسند اور مسند الیہ، جبکہ اس کے علاوہ باقی کلام کے جو حصے ہیں وہ فضلہ کہلاتے ہیں بھائی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلبہ عموماً اس کو فضلہ پڑھتے ہیں فا کے ضمہ کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے، فا کے فتحہ کے ساتھ اس کو پڑھیں. فضلہ کا معنی ہے زائد بھائی، زائد، چونکہ یہ بھی مسند اور مسند الیہ سے زائد حصہ ہوتا ہے کلام کا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، فضلہ. اور اس کو حذف بھی کر دیا جائے تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور یہ جو منصوبات ہیں، جیسے مفعول بھی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہ ہے، اور اسی طرح حال، تمیز وغیرہ، یہ سب کیا ہیں، فضلہ ہیں. اگر ان کو حذف بھی کر دیا جائے تو کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ مسند اور مسند الیہ موجود ہیں بھائی. لیکن کبھی کبھار یہ فضلہ بھی اہم ہو جاتا ہے اور اس کو اگر حذف کیا جائے تو کلام ہی درست نہیں رہتا. جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. اب یہ مَرَحَا حال ہے، فضلہ ہے، لیکن اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو کلام کا معنی خراب ہو جائے گا. پھر تو کلام کا معنی بن جائے گا کہ اللہ منع فرما رہے ہیں کہ تم زمین پر نہ چلو، حالانکہ اللہ تعالی زمین پر چلنے سے منع نہیں فرما رہے، بلکہ زمین پر تکبر کرنے سے اللہ منع فرما رہے ہیں. تو فضلہ بھی کبھی کبھار اہم بن جاتا ہے اور اس کے حذف سے بھی کلام کا معنی خراب ہو جاتا ہے. لیکن عام طور پر فضلہ جو ہوتا ہے وہ زائد ہوتا ہے، اس کے حذف سے کلام فاسد نہیں ہوتا، کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی. تو چونکہ یہ جو مرفوعات یہ کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتے ہیں، اس لیے مرفوعات کو مقدم کیا. میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ شارح جامی آگے چل کر یہ تو ذکر کریں گے کہ منصوبات کو کیوں مقدم کیا مجرورات پر، لیکن یہاں یہ ذکر نہیں کر رہے کہ مرفوعات کو کیوں مقدم کیا منصوبات اور مجرورات پر. وجہ یہ کہ مرفوعات کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں اور منصوبات اور مجرورات فضلہ واقع ہوتے ہیں، اور جو عمدہ ہو اس کو ہونا ہی مقدم چاہیے، اسی لیے مرفوعات کو مقدم ذکر کیا بھائی. और फिर मरफूआत जमा लेकर आए। भाई मरफूउन नहीं कहा, मरफूआत कहा। बतलाना ये चाहते हैं कि मरफूआत की कई अनवाह हैं, कई अकसाम हैं। अगर मरफू कह देते तो शुबा होता, शायद मरफू एक ही किस्म का होता है भाई। और फिर उसके बाद साहिब जामी ने आपको बतलाया कि ये मरफूआत मरफूउन की जमा है, मरफूआतुन की नहीं, इसलिए क्योंकि इसका मौसूफ जो है वो इसम है और इसम मुजक्कर है, तो उसकी सिफत मरफूउन आएगी न के मरफूआतुन भाई। और फिर उसके बाद एक जाब्ता भी जिक्र फरमाया कि अगर ये मरफूउन की जमा है तो मरफूउन की जमा तो मरफूउन आनी चाहिए थी, ये मरफूआत कैसे आ गई। तो उसके लिए एक जाब्ता जिक्र फरमाया कि हर मुजक्कर गैर याकिल जो है, यानी हर वो मुजक्कर जो गैर ज़वील उकूल में से हो, उसकी सिफत की जमा अरबी जुबान में कसरत के साथ अलिफ ता के साथ लाई जाती है। इसम जो है वो भी मुफरद मुजक्कर है, तो इसकी सिफत जो है वो अलिफ ता के साथ लाई गई मरफूआत भाई। और उसके बाद साहिब जामी ने आगे कई मिसालें और नजीरें भी जिक्र कर दी। मैंने बतलाया था एक होती है नजीर और एक होती है मिसाल। नजीर के जरिए जाब्ते का इस्बात होता है और मिसाल के जरिए कायदे की वजाहत होती है, और हर नजीर मिसाल भी है लेकिन हर मिसाल नजीर नहीं। तो आगे तीन चार नजीरें जिक्र कर दी कलाम अरब से जो जमा थी मुजक्कर गैर ज़वील उकूल की, और उनकी जमा अलिफ ता के साथ अरबी में आम इस्तेमाल होती है। तो इससे इस कायदे और जाब्ते का इस बात भी हो गया और यही इसके लिए मिसालें भी हैं, तो कायदे की वजाहत भी हो गई भाई। फिर उसके बाद मैंने आपको बतलाया था कि ये जो साहिब जामी इबारत लाए अल मरफूआत के बाद के जम उल मरफूई लल मरफूआती, ये इबारत क्यों लाए? या तो वो इस मकाम की तहकीक करना चाहते हैं, मतन में चूंकि अलमरफूआत लफ्ज आया था तो उसकी तहकीक करना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि ये मरफूउन की जमा है, मरफूआतुन की जमा नहीं। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि यूं कहा जाए कि आगे हुआ मश्तमला इबारत आ रही थी और उसके अंदर हुआ जमीर जो है उसको साहिब जामी मरफूउन को राजे करना चाहते हैं। और इस पर कोई इश्काल करने वाला फिर कह सकता है कि भाई पीछे तो मरफूउन का जिक्र ही नहीं आया, पीछे तो मरफूआत का जिक्र आया है और मरफूआत का मुफरत तो मरफूआतुन होता है, तो मरफूउन का जिक्र न लफ्जों में आया और ना ज़िमनन आया। तो साहिब जामी ने इसी की वजह से पहले ही बतला दिया कि जो मरफूआत है ये मरफूउन की जमा है, मरफूआतुन की जमा नहीं है। तो गोया साहिब जामी ने दावा कर दिया, और इस दावे के दो जुज हो गए, एक जुज है ईजाबी और एक जुज है सलबी। जुज ईजाबी जिसमें एक छह का इस्बात होता है, और जुजे सलबी जिसमें एक शय की नफी होती है, उसका सलब होता है। तो जब कहा जम उल मरफू के मरफूआत मरफूउन की जमा है, ये ईजाबी जुज है, देखो इसमें नफी नहीं है। और दूसरा जुज क्या कहा कि लल मरफूआती, ये मरफूआती की जमा नहीं है, ये सलबी जुज हुआ। तो दोनों की फिर आगे दलील भी दी, तो सलबी जुज की दलील पहले दी, एक जुज क्या सलबी के मरफूआतुन की जमा नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं ली अन्न मौसूफहुल इस्मु, इसलिए क्योंकि इसका मौसूफ इसम है, जब मौसूफ इसम है तो उसकी सिफत मरफूआतुन नहीं आ सकती, बल्कि क्या आएगी? मरफूउन आएगी, क्योंकि इसम मुजक्कर है तो सिफत भी क्या आएगी? मुजक्कर आएगी, क्योंकि सिफत की मुताबकत होती है मौसूफ के साथ। और एक जुज क्या था कि ये मरफूउन की जमा है, यानी ईजाबी जुज, तो उसकी दलील दी कि हुआ मुजक्कर ला याकिलू, के इसम क्या है? मुजक्कर ला याकिल है, और मुजक्कर ला याकिल की जो सिफत है उसकी जमा अरबी जुबान में कसरत के साथ अलिफ ता के साथ लाई जाती है। मुजक्कर ला याकिल की जो सिफत है उसकी जमा अलिफ ता के साथ अरबी जुबान में कसरत के साथ लाई जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई अच्छी तरह। आगे देखिए भाई, कहते हैं हुआ अल मरफू उद्दालु अलैहिल मरफूआतु लिअन्न तारीफ इन्नमा यकूनु लिल माहियति ला लिल अफराद। भाई पहले मतन मतन देख लें, पहले भी हम मतन को हल कर चुके हैं। देखिए मतन, अल मरफूआतु हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, कि मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। मतन पर नजर है, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। हुआ मश्तमला, जरा सिर्फ मतन पे नजर रखें, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति। यहां हुआ जमीर आई, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, ये हुआ जमीर किसको राजे है? तो आम शारहीन लिखते हैं कि यह हुआ जमीर मरफूआत को राजे है। भाई किसको राजे है? मरफूआत को राजे है। भाई मरफूआत को कैसे राजे है? मरफूआत तो जमा है, और जमा की तरफ या तो जमा की जमीर राजे की जाती है, या जमा बतावील जमातुन वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, तो उसकी तरफ फिर वाहिद मुअन्नस की जमीर राजे की जाती है। तो यहां पर या तो जमा की जमीर होनी चाहिए थी, या हिया जमीर होनी चाहिए थी, जो किसको राजे हो? मरफूआत को, बतावील जमातुन के, भाई वाहिद मुअन्नस के हुक्म में। तो ये जमीर आम शारहीन फरमाते हैं कि यह मरफूआत को राजे है। तो इस पर सवाल पैदा होता है कि मरफूआत को यह जमीर कैसे राजे? तो वो जवाब देते हैं, एक जाब्ता जिक्र करते हैं। जाब्ता यह है कि जब भी जमीर दायर हो जाए बैनल मर्जई वल खबर, जमीर किसके दरमियान आ जाए? मर्जे और खबर, यानी अगर मर्जे की तरफ देखें तो जमीर एक किस्म की लानी पड़े, और खबर की तरफ नजर करें तो जमीर दूसरी किस्म की लानी पड़े, तो उस वक्त दोनों की रियायत रखना जायज है। मर्जे की रियायत रखते हुए मर्जे के मुताबिक जमीर लाना भी सही, और खबर की रियायत रखते हुए खबर के मुताबिक जमीर लाना भी सही। तो यहां पर आप देखो, खबर क्या है? मश्तमला अला अलमिल फाइलियति। तो ये मश्तमला में ये जो मा है ये है खबर, और ये है मुफरद मुजक्कर है मश्तमला, और पीछे मरफूआत वो है जमीर का मर्जा। उस मर्जे की तरफ देखें तो हिया जमीर लानी चाहिए, या जमा की जमीर लानी चाहिए, या हिया, क्योंकि जमा बतावील जमात उन किसके हुक्म में है? वाहिद मुअन्नस के। तो यहां अगर मर्जे की रायत रखें तो हिया जमीर लानी चाहिए, और अगर खबर की तरफ देखें तो खबर है मश्तमला, तो उसके मुताबिक हुआ जमीर लाना भी जायज है। तो ऐसे मौके पर जाब्ता है जब जमीर दायर हो जाए बैनल मर्जई वल खबर, यानी खबर तकाजा कर रही है एक नौ की जमीर का, और मर्जा तकाजा कर रहा है दूसरी किस्म की जमीर का, तो दोनों की रियायत रखना जायज है। आप चाहें तो मर्जे की रियायत रखें और उसके मुताबिक जमीर लें, खबर की रियायत न रखें, और आप चाहें तो खबर की रियायत रखें और खबर के मुताबिक जमीर ले आए और मर्जे की रियायत न रखें। भाई तो आम शारहीन फरमाते हैं कि यह हुआ जमीर मरफूआत को राजे है। किसको राजे? मरफूआत। और मातिन यानी साहिब काफिया ने खबर की रियायत रखी यहां पर, खबर की रियायत रखना भी जायज था और मर्जे की भी, और साहिब काफिया ने किसकी रियायत रखी? खबर की रियायत रखी। खबर चूंकि मुफरद मुजक्कर थी इसलिए वो हुआ मुफरद मुजक्कर ले आए, और अगर वो मर्जे की रियायत रखना चाहते तो उसकी रियायत भी रख सकते थे, और हिया जमीर भी ला सकते थे, या जमा की जमीर भी। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन साहिब जामी ने इसको रद्द किया। साहिब जामी फरमाते हैं हुआ अइल मरफू उद्दालु अलैहिल मरफूआत, यानी कि वो मरफू जिस पर मरफूआत दलालत कर रहा है। तो साहिब जामी ने जमीर को अल मरफूआत की तरफ राजिया नहीं फरमाया बल्कि बल्कि मरफूआ की तरफ लौटाया। याद रखो जमा जो है वो अफराद पर दलालत करती है। रजुलुन की जमा क्या? रिजाल। तो रिजाल का क्या माना? ऐ रजुलुन व रजुलुन व रजुलुन, कम से कम कितने अफराद? तीन अफराद। तो रिजाल का क्या माना? रजुलुन व रजुलुन व रजुलुन। बात समझ में आ रही है? तो जमा किस पर दलालत करती है? अफराद पर दलालत करती है। इसी तरह याद रखना ये जो जमा है ये जिंस पर भी दलालत करती है। मैंने कहा रिजालुन, आपको अफराद समझ में आ गए कि रजुल व रजुल व रजुल, और साथ ही जिंस भी समझ में आ गए कि नहीं, कि कौन सी जिंस के अफराद मुराद हैं, रजुल के अफराद मुराद हैं या इमरा के अफराद मुराद हैं? रजुल। देखा रिजाल जो जमा होती है वो अफराद पर भी दलालत करती है और जिंस पर भी दलालत करती है। बात समझ में आ रही है कि कौन सी जिंस के अफराद मुराद हैं? रजुल की जिंस के अफराद मुराद हैं। इसी तरह जैसे यहां आया अलमरफूआत, तो अलमरफूआत का क्या माना? एक तो इसने अफराद पर दलालत की यानी मरफूउन व मरफूउन व मरफूउन, और नीज साथ इसने जिंस पर भी दलालत कर दी। कौन सी जिंस के अफराद मुराद हैं? मंसूबात वाले, मजरूरात वाले या मरफूआत की जिंस के? मरफूआत की जिंस के। बात समझ में आ रही है? तो जमा जो होती है वो अफराद पर भी दलालत करती है और जिंस पर भी दलालत करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आम शारहीन ने हुआ जमीर को मरफूआत की तरफ राजे किया था और कहा था कि साहिब काफिया ने खबर की रियायत रखते हुए हुआ जमीर जिक्र कर दी, वरना तो हिया जमीर लानी चाहिए थी या जमा की जमीर लानी चाहिए थी, क्योंकि किसको राजे है? मरफूआत को। लेकिन साहिब जामी इसको रद्द फरमाते हैं कि नहीं भाई, ये हुआ जमीर जो है मरफूआत को नहीं राजे, बल्कि ये हुआ जमीर राजे है मरफूअ को जिस पर मरफूआत दलालत कर रहा है। जमा एक तो अफराद पर दलालत करती है और एक जिंस पर। तो यहां हुआ जमीर किसको राजे? वो मरफूउन जिस पर मरफूआत दलालत कर रहा है, यानी यूं कहें वो मरफूउन जो मरफूआत के जिमन में मौजूद है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इअदिलू हुआ अकरबुल तक्वा, इअदिलू हुआ अकरबुल तक्वा। देखो इअदिलू फेल अमर है, तुम लोग अदल करो, इंसाफ करो। इअदिलू फेल अमर आया और आगे हुआ जमीर आ गई, इअदिलू हुआ अकरबुल तक्वा। हुआ जमीर मुफस्सरीन हजरात फरमाते हैं कि यह हुआ जमीर अदल को राजिअ है। सवाल पैदा होता है पीछे तो कहीं अदल का जिक्र नहीं आया, पीछे तो फेल आया है इअदिलू, अदल मस्दर का जिक्र तो आया ही नहीं। तो जवाब याद रखना कि हर फेल जो है वो तीन चीजों पर दलालत करता है। फेल खुद तो मुफरद है लेकिन इसका मफहूम मुरक्कब है तीन चीजों से। नंबर एक ये मस्दर पर दलालत करता है, दूसरा जमाने पर, और तीसरा निस्बत इलल फाइल। जाराबा, जाराबा के अंदर जर्ब मस्दर भी है, जमाना माजी भी है और निस्बत इलल फाइल भी है। यज़रिबु फेले मुजारे ले लो, फेले मुजारे ये जर्ब मस्दर पर भी दलालत कर रहा है और हाल ये इस्तकबाल पर भी दलालत कर रहा है और तीसरा निस्बत इलल फाइल। तो यहां पर भी इअदिलू फेले अमर आया और फेले अमर के अंदर अदल मस्दर भी आ गया, निस्बत इलल फाइल भी आ गई और जमाना भी आ गया मुस्तकबिल वाला, क्योंकि फेल अमर जमाना मुस्तकबिल पर दलालत करता है। तो हुआ जमीर किसको राजे? अदल को। वो अदल जो किसके जिमन में आया? इअदिलू के जिमन में जो मस्दर गुजर गया हुआ जमीर उसको राजे है। बात समझ गया है कि नहीं? क्या एतराज क्या हुआ? इअदिलू हुआ अकरबुल तक्वा। सवाल पैदा हुआ यह हुआ जमीर किसको राजे? तो जवाब यह कि अदल को राजे। भाई अदल का तो पीछे कहीं जिक्र ही नहीं आया, पीछे तो फेल आया है इअदिलू। तो जवाब यह कि हर फेल के जिमन में मस्दर मौजूद होता है। फेल जो है मस्दर पर भी दलालत करता है, जमाने पर भी और निस्बत इलल फाइल पर भी। तो गोया अदल का जिक्र पीछे सराहतन तो नहीं हुआ लेकिन जिमनन हो गया। किसके जिमन में? इअदिलू के जिमन में। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी इसी तरह शारह जामी ने यह हुआ जमीर जो है उस मरफून की तरफ राजे की है जो मरफूआत के जिमन में आ गया, क्योंकि मरफूआत क्या है, जमा, और जमा किस पर दलालत करती है, अफराद पर, तो उसके जिमन में मुफरद भी आ गया। तो यह हुआ जमीर किसको राजे, वो मरफू जो किसके जिमन में आया, मरफूआत के जिमन में आया। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया कि जमा जिस तरह अफराद पर दलालत करती है इसी तरह जिन्स पर भी दलालत करती है, तो यहां जिनसे मरफू मुराद है, फर्द मरफू नहीं। हुआ जमीर राजे है किसको, मरफू को, कौन सा मरफू, फर्द मरफू या जिनसे मरफू, भाई जिनसे मरफू को यह राजे है। तवज्जो है भाई, क्या वजह है जिनसे मरफू क्यों मुराद दिया यहां पर, तो वजह यह क्योंकि ये आगे तारीफ कर रहे हैं भाई कि मरफूआत किसे कहते हैं, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियत, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल होता है, तो ये मरफू की तारीफ की जा रही है। और याद रखो तारीफ हमेशा जिन्स और माहियत की जाती है, अफराद की नहीं। तारीफ किसकी की जाती है, जिन्स और माहियत की तारीफ की जाती है, अफराद की तारीफ नहीं की जाती। मसलन मेरे से अगर कोई इंसान की तारीफ पूछे और मैं उसको जैद की तारीफ बतलाना शुरू कर दूं, जैद के बारे में बतलाना शुरू कर दूं भाई कि इस तरह का उसका कद होगा, इस तरह की दो आंखें होंगी, इस तरह का उसने लिबास पहना होगा, भाई ये तो मैं फर्द की तारीफ कर रहा हूं, ये तारीफ तो सिर्फ जैद पे सादिक आएगी, अमर बकर खालिद किसी और पर तो ये तारीफ सादिक नहीं आएगी। तो अफराद तो बहुत सारे होते हैं, तो तारीफ कभी अफराद की नहीं की जाती, बल्कि तारीफ किसकी की जाती है, जिन्स और माहियत की जाती है, ताकि हर हर फर्द पर सादिक आए। अब मुझसे किसने पूछा इंसान की तारीफ क्या है, इंसान किसे कहते हैं, मैंने कहा हैवान नातिक, इंसान की तारीफ क्या है, हैवान नातिक। अब ये जैद पर भी सादिक आ रही है, वो भी हैवान नातिक है, ये बकर पर भी सादिक आ रही है, वो भी हैवान नातिक है, खालिद वगैरह जितने अफराद इंसान होंगे हर एक पर ये तारीफ सादिक आएगी। तो तारीफ अफराद की नहीं की जाती, बल्कि किसकी की जाती है, जिन्स और माहियत की तारीफ की जाती है। तो यहां पर आम शारहीन ने हुआ जमीर किसको लौटाई, मरफूआत को लौटाई, और क्या कहा, साहिबे काफिया ने किसका लिहाज रखा है, खबर का लिहाज रखा है, मश्तमला को देखते हुए हुआ जमीर लेकर आए, वरना यह राजे किसको है, मरफूआत को राजे है। लेकिन साहिबे जामी ने इसको रद्द कर दिया कि नहीं भाई, हुआ जमीर मरफूआत को आप राजे नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप मरफूआत को जमीर राजे करेंगे, मरफूआत तो जमा है, और जमा तो किस पर दलालत करती है, अफराद पर, यह तो अफराद की तारीफ हो जाएगी, हालांकि तारीफ अफराद की नहीं की जाती, बल्कि जिन्स और माहियत की जाती है। लिहाजा हुआ जमीर मरफूआत को नहीं राजे, बल्कि उस मरफून को राजे है जिस पर मरफूआत दलालत कर रहा है, और मरफूआत जिस तरह अफराद पर दलालत करता है, जमा है, इसी तरह जिन्स पर भी दलालत करता है। तो यहां मरफू से फर्द मरफू मुराद नहीं है, बल्कि जिनसे मरफू। क्या बात हुई, आम शारहीन ने किसको राजे की, जमीर मरफूआत को, लेकिन शारह जामी ने रद्द किया, क्या फरमाया कि यह तारीफ की जा रही है और तारीफ अफराद की नहीं की जाती, क्योंकि अफराद तो लाम उतना ही होते हैं, किस किस फर्द की आप तारीफ करेंगे, और एक फर्द की तारीफ करेंगे वो दूसरे पर सादिक नहीं आएगी, तो तारीफ किसकी की जाती है, जिन्स और माहियत की जाती है। लिहाजा यह हुआ जमीर किसको लौटाओ, उस मरफून को जिस पर कौन दलालत कर रहा है, मरफूआत दलालत कर रहा है, और मरफूआत जैसे जमा है, जैसे वो अफराद पर दलालत करता है, इसी तरह वो जिन्स और माहियत पर भी दलालत करता है। तो हुआ जमीर किसको राजे, उस मरफून को जो किसके जिमन में आ गया, मरफूआत के जिमन में आ गया। और फर्द मरफू मुराद है या जिनसे मरफू मुराद है, यहां जिन्स मुराद है। बात समझ में आ गई, फर्द मरफू मुराद नहीं, क्योंकि तारीफ फर्द की नहीं की जाती। यहां तक बात समझ में आ गई, तो देखो साहिबे जामी ने इस हुआ मश्तमला के अंदर जो हुआ जमीर आई थी, इसको उस जिनसे मरफू की तरफ राजे किया जिस पर लफ्ज मरफूआत दलालत कर रहा है, यानी वो जिनसे मरफू जो जिमनन मजकूर है, सराहतन मजकूर नहीं, वो मरफू जो मरफूआत के जिमन में मजकूर है, सराहतन मजकूर नहीं, तो यह हुआ जमीर उसको राजे की। इस पर बास तलबा के जहनों में हो सकता है यह इश्काल है कि यह हुआ जमीर वो जो मरफूआत के जिमन में मरफू था उसकी तरफ राजे की। भाई पीछे एक डेढ़ सतर कबल अभी गुजरा है कि अल मरफूआतो जम उल मरफूई लल मरफूआती, तो भाई मरफू का जिक्र तो पीछे आ गया, तो यह हुआ जमीर इस मरफून को क्यों नहीं राजे करते? आपने कहा कि हुआ जमीर राजे है वो मरफू को, और मरफू का तो पीछे जिक्र नहीं, वो मरफू तो किसके जिमन में है? मरफूआत के जिमन में। भाई मरफू तो पीछे सराहतन जिक्र है, डेढ़ सतर कबल अभी गुजरा है कि अल मरफूआतु जम उल मरफूई, तो देखो मरफू का लफ्ज तो सराहतन जिक्र है, इसकी तरफ साहिब जामीन ने जमीर क्यों राजे नहीं की? तो जवाब याद रखना भाई, भाई ये इश्काल आपके जहन में नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये तो साहिब जामी तकरीर कर रहे हैं, जम उल मरफूई लल मरफूआती, ये तकरीर किसकी है? ये तो साहिब जामी की है, और ये जो हुआ जमीर है ये तो साहिब काफिया की है भाई, मतन है, और मतन क्या था? मतन सिर्फ यूं है, सुनो, अल मरफूआतु हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, अल मरफूआतु हुआ मश्तमला, अब देखो हुआ जमीर आई और कहीं पर मरफू दरमियान में आया नहीं, ये जो मरफू पीछे आया था ये तो साहिब जामी ने जिक्र किया भाई, तो इसकी तरफ मतन की जमीर को इसकी तरफ राजे नहीं किया जा सकता, मतन की जमीर मतन की तरफ ही राजे होगी। बात समझ में आ गई? देखिए किताब पर, हुआ अल मरफू दालु अलैहिल मरफूआतु, यानी वो मरफू जिस पर मरफूआत दलालत करता है, जिस पर मरफूआत दलालत कर रहा है, कौन सा मरफू? फर्द मरफू या जिनसे मरफू? भाई जिनसे, वो जिनसे मरफू जिस पर मरफूआत दलालत कर रहा है, لأن تعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد، इसलिए क्योंकि तारीफ जो है वो माहियत की होती है, ला लिल अफरादी, न के अफराद की। आगे देखिए, कहते हैं ومشتمل أي اسم اشتمل على علم الفاعلية، ومشتمل أي اسم اشتمل، मतन में आया مشتمل और साहिब जामी ने आगे उसकी तफसीर की आई इस्मो निश्ता माला, मां की जगह इसम ले आए, ये दरअसल मां का मिसदाक बतलाना चाहते हैं। याद रखो एक मां मौसूला होता है और एक मां मौसूफा, मैं पहले भी बयान कर चुका हूं जहां पर इसम की तारीफ हमने शुरू की थी, अलिस्मु मा दल्ला अला मानन फी नफ्सिही गैर मुक्तरिनिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा, तो वहां पर मैंने जिक्र किया था, आपको बतलाया था कि एक मां मौसूला होता है और एक मां मौसूफा, मां मौसूला ये इसमें मौसूल होता है और आगे एक जुमला आता है जो इसका सिला बनता है, मौसूल के साथ सिला मिलेगा तो उसका माना समझ में आएगा, उसके बगैर उसका माना समझ में नहीं आएगा। और एक मां मौसूफा है भाई, मां मौसूफा बिल्कुल उसी मां मौसूला की तरह होता है, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि यह नकेरा होता है, मां मौसूला तो इसमें मौसूल है वो मारिफा होता है, जबकि मां मौसूफा जो है वो नकेरा होता है और इसके बाद जो जुमला आता है वो उसकी सिफत बनता है, तो मां मौसूला के बाद सिला आएगा और मां मौसूला मारिफा होता है, और मां मौसूफा के बाद जो जुमला आएगा वो उसकी सिफत बनेगा, और ये मां मौसूफा नकेरा होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके जुमला किसके हुक्म में है? नकेरा के हुक्म में, तो जब ये मां मौसूफा है और जुमला आगे इसकी सिफत बन रहा है, इसी से पता चल जाता है कि ये मां नकेरा है भाई। तो मां मौसूला जो है वो मारिफा होता है और उसकी तफसीर अल्लजी के साथ या अशई के साथ, कोई मुअय्यन चीज के साथ उसकी तफसीर की जाती है। देखो अशई अलिफ्लाम उस पर दाखिल है और अलिफ्लाम जिस लफ्ज पर दाखिल है उसको मारिफा बना देता है, जबकि मां मौसूफा जो होता है उसकी तफसीर शई उनके साथ की जाती है, कोई चीज तो यह मां मौसूफा की तफसीर की जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? मां मौसूला की तफसीर किसके साथ की जाती है? अल्लजी या अशय कह लो, अशय। और मां मौसूफा की तफसीर किसके साथ की जाती है? शय उनके साथ उसकी तफसीर की जाती है। जबकि यहां साहिब जामी ने मश्तमला की तफसीर की है, ऐ इस्मुन इश्तमला, इस मुन के साथ की है, शय उन्नी निकाला, शय उन्नी निकाला। यह दरअसल मां का मिसदाक बतलाना चाहते हैं कि यहां पर जो मां आया, मां तो वैसे मां मौसूफा आम होता है, किस माना में होता है, शय उनके माना में होता है। और याद रखो शय उनका लफ्ज अनकर उन नकेरात है, दुनिया की हर चीज पर यह सादिक आता है। किताब ये भी क्या है, शय उन। कलम ये भी क्या है, शय उन। पहाड़ ये भी क्या है, शय उन। आसमान वो भी क्या है, शय उन। तो शय उनका लफ्ज हर चीज पर सादिक आता है, ये अनकर उन नकेरात है। लेकिन यहां पर साहिबे जामी ने मां की तफसीर शय उन के साथ नहीं की बल्कि इस्म उन के साथ की। ये दरअसल मां का मिस्ताक बतलाना चाहते हैं कि यहां पर मां से दुनिया की हर चीज मुराद नहीं है बल्कि इसम मुराद है भाई, बल्कि इसलिए क्योंकि इसम की बहस चल रही है इसमें मौरब की, और तो लिहाजा यहां हर चीज मुराद नहीं है। बात समझ में आ गई भाई। देखिए ना इश्काल होता है, इन्होंने क्या कहा, मरफू किसे कहते हैं, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियति, जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, और फाइल होने की अलामत क्या है, रफा। तवज्जो है, रफा। और रफा की कितनी सूरतें हैं, कभी जम्मा के साथ आएगा जैदुन, और कभी वाव के साथ आएगा मुस्लिमूना, और कभी अलिफ के साथ आएगा रजुलानी। मुफरद मुनसरिफ सही का रफा किसके साथ आता है, जम्मा के साथ, जानी जैदुन रअयतु जैदन मररतु बि जैदिन, तो देखो रफा जैदुन जम्मा के साथ आया। और जमा मुजक्कर सालिम, जा अनी मुस्लिमूना रअयतु मुस्लिमीना मररतु बि मुस्लिमीना, इसका रफा वाव के साथ। और तस्निया जो है, जा अनी रजुलानी रअयतु रजुलैनी मररतु बि रजुलैनी, तस्निया का रफा किसके साथ आता है, अलिफ के साथ। तो अगर मां को अपने उमूम पर बाकी रखें, मां की तफसीर किस चीज के साथ की जाती है, शयउन। अगर शयउन के साथ मां की तफसीर करें फिर तो एतराज होता है। इन्होंने क्या कहा, मरफू वो है मश्तमल अला अलमिल फाइलियती, जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। जी जैदुन, जैदुन पर क्या रहा है, जम्मा, तो मालूम हुआ जैद भी क्या है, मरफू है भाई, जैद भी क्या है, ये फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल है। इसी तरह जैद की जो दाल है, दाल पर क्या आ रहा है, जम, तो दाल को भी मरफू कहना पड़ेगा, हालांकि दाल तो हर्फ है भाई। इसी तरह यज़रिबु जैदुन, यज़रिबु फेल मुजारे है, फेल मुजारे भी मरफू होता है। अगर मां से मुराद शय उन मुराद लिया जाए, मरफू किसे कहते हैं, हुआ मश्तमल अला अलमिल फाइलियती, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत यानी रफा पर मुश्तमिल हो, फिर तो दाल भी इस तारीफ के अंदर दाखिल हो गया, उसको भी क्या कहना पड़ेगा, जैद के आखिर में जो दाल आ रही है इसको भी क्या कहना पड़ेगा, ये भी मरफू है। इसी तरह यज़रिबु फेले मुजारे भी इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, हालांकि इस वक्त बहस किसकी चल रही है, इसम की बहस चल रही है। तो इसीलिए साहिब जामी ने मां की तफसीर शय उनके साथ नहीं की बल्कि इस्म उनके साथ की, यानी यहां पर मां का मिसदाक क्या है, किस चीज पर वो सादिक आ रहा है, क्या इससे मुराद है, वो जिक्र कर दिया कि दुनिया की हर चीज इससे मुराद नहीं बल्कि इसम मुराद है, क्योंकि इसम की बहस चल रही है। बात समझ में आ गई। यहां एक और एतराज अक्सर शारह उर्दू शुरुहात में आपको आम मिलेगा भाई, तमाम उर्दू शुरुहात वाले के एतराज जिक्र करते हैं यहां, और वो दुरुस्त नहीं है भाई। इश्काल ये जिक्र करते हैं, इश्काल ये कि जरा इबारत जरा मतन पे नजर रखो, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियती। एतराज ये कि साहिब जामी ने मश्तमला की तफसीर आई इस्म इश्तमला के साथ क्यों की, तवज्जो है, एतराज करते हैं और फिर जवाब जिक्र करते हैं कि भाई साहिब जामी ने मां को मौसूफा बनाया, इस मां को मौसूला नहीं बनाया। वजह यह कि अगर इस मां को मौसूला बनाएंगे तो फिर दरमियान में फसल का हल्लाना वाजिब है, दरमियान में फसल का लाना वाजिब है। याद रखो मुब्तदा में असल है कि वो मारिफा होता है, और खबर में असल यह है कि वो नकेरा होती है। जैदुन काइमुन, देखो जैदुन है मुब्तदा और काइमुन है उसकी खबर, तो मुब्तदा है मारिफा और खबर क्या है नकेरा, लेकिन कभी कभार खबर को भी मारिफा ले आते हैं भाई, कभी कभार खबर को भी मारिफा ले आते हैं। मसलन जैदुन कायमुन के बजाय जैदुन अलकायमु, अलिफ्लाम के साथ उसकी खबर ले आएंगे जैदुन अलकायमु, तो खबर को भी कभी कभार मारिफा ले आते हैं। और मसलन क्या कहेंगे, जैदुन अलकायमु। और बलागत की किताबों में लिखा है कि ये आम तौर पर जब हसर का माना पैदा करना हो तो उस वक्त खबर को भी मारिफा ले आते हैं। हसर, कसर और तख्सीस तीनों का एक ही माना है, तो कभी कभार खबर जो है उसको भी मारिफा ले आते हैं, तो वो हसर, कसर और तख्सीस का फायदा देती है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन कायमुन, देखो कायमुन नकेरा है, तो जुमले का तर्जमा यूं होगा जैद खड़ा है। और जब अलकायम आप मारिफा ले आएंगे तो फिर जैदुन अलकायमु, इसका माना है कि जैद ही खड़ा है, हसर आ गया, जैद ही खड़ा है। मसलन सुनने वाले का ख्याल था कि शायद जैद और आमर दोनों खड़े हैं, तो आप उसको जवाब में कहते हैं जैदुन अलकायमु, जैद ही खड़ा है, यानी आमर खड़ा नहीं है। तो कभी कभार खबर को भी मारिफा लेकर आते हैं और उसका मकसद जो है कलाम में हसर पैदा करना होता है, तो हसर के लिए खबर को भी कभी कभार मारिफा ले आते हैं। और फिर याद रखो, मसलन मैंने कहा जैदुन अलकायमु, जैदुन अलकायमु, तवज्जो है, जैदुन अलकायमु, तो जैदुन है मुबतदा और अलकायम है उसकी खबर। लेकिन बजाहिर शुबा पड़ता है, सुनने वाला समझता है शायद ये आपस में मौसूफ सिफत हैं, इसलिए क्योंकि क्योंकि खबर तो अमूमन नकेरा होती है, लेकिन यहां खबर भी क्या आ गई, खबर भी यहां मारिफा आ गई। यूं कहें दो लफ्ज आए और दोनों मारिफा हैं, तो सुनने वाला समझता है शायद ये आपस में मौसूफ सिफत है, तो जैदुन ये भी मारिफा, अलकायम ये भी मारिफा, तो वज़ाहे शुबा होता है कि शायद आपस में ये मौसूफ सिफत है, जैदुन है मौसूफ और अलकायम है उसकी सिफत। तो फिर दरमियान में फर्क करने के लिए यूं करते हैं कि दरमियान में एक जमीर जैसा एक सीगा ले आते हैं जिसको फसल कहते हैं, जमीर, और ये मुब्तदा के मुताबिक होता है। मसलन जैद क्या है, मुफरद मुजक्कर, तवज्जो है, मुफरद मुजक्कर, तो मुफरद मुजक्कर की एक जमीर बीच में ले आएंगे। अब यूं कहेंगे जैदुन हुवल कायमु, सिर्फ जैदुन अल कायमु था तो मौसूफ सिफत का शुबा हो रहा था, लेकिन जब दरमियान में हुआ आ गया अब मौसूफ सिफत का शुबा नहीं होगा, क्योंकि मौसूफ सिफत में दरमियान में फसल नहीं किया जाता, कोई और चीज दरमियान में नहीं लाई जाती, मौसूफ के फौरन बाद किसको लाते हैं, सिफत को लाते हैं। तो यहां दरमियान में यह हुआ जमीर जैसा एक सीगा ले आते हैं। और याद रखो फिर इसके अंदर भी इख्तिलाफ है, बाज फरमाते हैं कि यह जमीर ही है जैदुन हुवल कायमु, तवज्जो है, तो तरकीब कैसे होगी, जैदुन मुबतदा है, मुबतदा अव्वल, हुआ मुबतदा सानी, और अल कायम यह हुआ की खबर है, अल कायम क्या है, हुआ की खबर है। आप यह ना कहें हुआ भी मारिफा और अल कायम भी मारिफा, यह तो फिर मौसूफ सिफत का शुआ हो रहा है, नहीं भाई, अज़मीर ला यूसफु वला यूसफु बिही, जमीर ना तो उसकी सिफत लाई जाती है और ना वो खुद किसी की सिफत बनती है, तो यहां हुआ और अल कायम के अंदर मौसूफ सिफत का शुबा नहीं होता। अच्छा मैं बात कर रहा था कि जैदुन हुवल कायमु की तरकीब बतला रहा था, क्या तरकीब होगी, जैदुन मुब्तदाए अव्वल, आगे हुआ मुब्तदाए सानी, और अल कायम यह मुब्तदाए सानी की खबर, मुब्तदाए सानी अपनी खबर से मिलकर फिर यह जुमला इस्मिया होकर यह खबर बनेगा किसके लिए, मुब्तदाए अव्वल के लिए। तरकीब समझ में आ रही है, ये बाज उलमा फरमाते हैं कि ये जमीर है, जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ये जमीर जैसी सूरत तो है लेकिन ये जमीर नहीं है, ये फसल है, ये हर्फ है, ये सिर्फ खबर और सिफत के दरमियान फर्क करने के लिए लाई गई। अगर हुआ ये फसल ना होती तो फिर लगता शायद अलकायम जैद की सिफत है, जैदुन अलकायमु, अगर हुआ ना हो तो क्या शुबा होता है कि अलकायम शायद जैद की सिफत है, लेकिन जब हुआ दरमियान में यह फसल आ गई, अब इसने फर्क कर दिया खबर में और सिफत में, अब पता चल गया कि यह खबर है सिफत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं, ये जो हुआ है ये जमीर है, इसम है, और जबकि बाज़ क्या फरमाते हैं ये फसल है, ये हर्फ है, ये सिर्फ फसल करने के लिए लाया गया, लिहाजा इसके लिए कोई महल्ले अराब नहीं होगा। मैंने बतलाया आपको कि कभी कभार खबर को भी मारिफा लाते हैं, और ये किस लिए लेकर आते हैं, ताकि कलाम में हसर पैदा हो जाए, और फिर ये खबर जब मारिफा हो, मुब्तदा तो है ही मारिफा, खबर भी मारिफा है, तो फिर सुनने वाले को शुबा हो सकता है शायद ये आपस में मुब्तदा खबर नहीं है बल्कि मौसूफ सिफत है, तो दरमियान में एक जमीर जैसा एक सीगा ले आते हैं जिसको फसल कहते हैं, और उस फसल के जरिए पता चल जाता है कि यह आगे सिफत नहीं आ रही बल्कि यह खबर है भाई। तो आम शारहीन फरमाते हैं कि जब खबर मारिफा हो तो फसल का लाना वाजिब है, जब
खबर मारिफा
मुब्तदा तो है ही मारिफा, जब खबर भी मारिफा हो तो दरमियान में फसल का लाना वाजिब है भाई, वाजिब है। और चूंकि यहां देखो यही इश्काल हो रहा था, हुआ मश्ता माला, हुआ क्या है मुब्तदा, तवज्जो है इबारत पर नजर है, हुआ मश्ता माला, हुआ है मुब्तदा, और मश्ता माला यह आगे उसकी खबर, अगर इस मां को मौसूला बनाए तो मुब्तदा हुआ वो भी मारिफा, और मश्ता माला जो खबर है वो भी मारिफा, और जब खबर मारिफा हो तो दरमियान में फसल का लाना वाजिब है। ये आम उर्दू की तमाम शुरुहात वाले इसी तरह लिखते हैं कि जब खबर मारिफा हो तो फसल का लाना वाजिब है, और चूंकि यहां पर तो कोई फसल नहीं है, हुआ और मश्ता माला के दरमियान कोई और हुआ सीगा है, कोई फसल है दरमियान में, और कोई फसल है ही नहीं, तो लिहाजा इश्काल होता था कि मश्ता माला ये तो मां मौसूला है, तवज्जो है, इस मां को अगर मौसूला बनाए फिर तो ये खबर में मारिफा हो गई, और मुब्तदा और खबर जब दोनों मारिफा हो तो दरमियान में क्या लाना वाजिब है, फसल का लाना वाजिब है, और यहां तो कोई फसल नहीं है, तो कहते हैं शारह जामी ने इसी का जवाब देने के लिए आगे फरमाया अय इस्मो निश्ता माला, बतला दिया कि ये मां मौसूला नहीं है, ये मां मौसूफा है भाई, ये मां मौसूला मां मौसूफा है भाई, लेकिन ये तकरीर दुरुस्त नहीं है भाई। खबर जब भी मारिफा हो फसल का लाना वाजिब नहीं है, हालांकि उर्दू की तमाम शुरुहात वालों ने इसी तरह लिखा है, और दलील भाई आपने जादु तालिबीन के अंदर पढ़ी है, अहादीस पढ़ी है, मशहूर हदीस है अद्दीनु अन्नसीहतु, अद्दीनु अन्नसीहतु, देखो अद्दीनु है मुब्तदा और अन्नसीहतु है खबर, मुब्तदा भी मारिफा और खबर भी मारिफा, और तर्जमा क्या है अद्दीनु अन्नसीहतु, दीन खैर खाही ही का नाम है, यूं कहो ये दीन जो है यानी दीन इस्लाम जो है अन्नसीहतु ये खैर ख्वाही ही है, ये खैर ख्वाही ही है, देखो तख्सीस आ गई, यूं तर्जमा कर लो ये दीन जो है सिर्फ खैर ख्वाही है, ये दीन इस्लाम जो है सिर्फ खैर ख्वाही है, हर एक के साथ खैर ख्वाही करना, किसी को भी किसी भी दर्जे में नुकसान और तकलीफ ना पहुंचाना, ये है दीन की हकीकत भाई। बात समझ में आ गई, तो ये हसर वाला तर्जमा आया किस वजह से, क्योंकि खबर मारिफा है, अद्दीनु है मुब्तदा और अन्नसीहतु है उसकी खबर, अगर अगर फसल का लाना वाजिब होता तो यहां फसल होनी चाहिए थी, लेकिन यहां फसल नहीं, तो याद रखो हमेशा खबर जब भी मारिफा हो तो फसल का लाना वाजिब नहीं है, हाँ लाना जायज है, कभी ले आते हैं फसल को और कभी फसल नहीं लाते, जैसे इस हदीस में आप देख रहे हैं अद्दीन उन्नसीहतु दीन खैर खाही ही है, इसमें कोई फसल नहीं। इसी तरह एक और हदीस है साहिब हिदाया किताब मवाकित सलात के अंदर जिक्र करते हैं अशफकुल हुमरतु, अशफकु अल हुमरतु, देखो अशफक मुब्तदा वो भी मारिफा, अल हुमरा ये खबर है ये भी मारिफा, और दरमियान में कोई फसल नहीं है, शफक सुर्खी ही है भाई, शफक में इख्तिलाफ है ना, या شفق یہ جو سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے کچھ دیر آسمان پر سرخی چھائی رہتی ہے مغربی کنارے پر یہ 10-15 منٹ تک, اور اس کے بعد پھر سفیدی چھا جاتی ہے اور وہ سفیدی کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے تک رہتی ہے. تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض فقہا فرماتے ہیں جو سرخی ہے اس کو شفق کہتے ہیں, اس کا نام شفق ہے, جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ جو سفیدی ہے اس کا نام شفق ہے بھائی, اور یہ تقریباً کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے تک تقریباً یہ رہتی ہے سفیدی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا بعض شارحین کا یہ کہنا کہ یہاں پر کوئی فصل نہیں ہے, اس لیے صاحب جامی نے مشتملہ کی تفسیر کس کے ساتھ کی, ایس منشتملہ, یہ تقریر صحیح نہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صاحب جامی نے مشتملہ کی تفسیر ایس منشتملہ کے ساتھ کیوں کی؟ توجہ ہے, عام شارحین کیا تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شبہ ہوتا تھا کہ مشتملہ یہ ماں تو موصولہ ہے, اور جب ماں موصولہ ہے تو اس سے پہلے کیا چاہیے, فصل چاہیے, اور یہاں تو فصل ذکر نہیں ہے. تو شارح جامی نے جواب دے دیا کہ نہیں بھائی, یہ ماں موصولہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ ماں موصوفہ ہے. تو سوال یہ کہ انہوں نے ماں موصوفہ اس کو کیوں بنایا؟ وجہ یہ کہ یہ خبر کا مقام ہے بھائی, اور خبر کے اندر اصل کیا ہے, وہ کیا ہونی چاہیے, نکرہ ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے اس کی تفسیر اس منشتملہ کے ساتھ کی کہ یہ خبر کا مقام ہے اور خبر میں بھی اصل کیا ہے, وہ نکرہ ہونی چاہیے, لہذا اس ماں کو موصولہ نہ بناؤ بلکہ ماں کو موصوفہ بناؤ بھائی. اگر اس ماں کو موصولہ بھی بنا دیا جائے پھر بھی یہاں فصل کا لانا کوئی واجب نہیں ہے, لیکن خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے, اس لیے انہوں نے ماں کو موصوفہ بنایا بھائی. عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّتِ اَيْ عَلَامَتِ كَوْنِ الْاسْمِ فَاعِلًا, عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّتِ اَيْ عَلَامَتِ كَوْنِ الْاسْمِ فَاعِلًا. ایک تو متن میں علم لفظ آیا تھا, شارح جامی نے اس کا معنی بتلا دیا کہ یہاں علم بمانے علامت کے ہے, اَيْ عَلَامَتِ كَوْنِ الْاسْمِ فَاعِلًا. الفاعلیت کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ہے بھائی. یاد رکھو کبھی کبھار مصدر سے صفت بنانے کے لیے اس کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا دی جاتی ہے, جیسے خصوص بھائی صاد کے ساتھ دونوں خصوص مصدر ہے, اسی کے آخر میں یا مشدد اور گول تا ملا کر اسے صفت بنا لی جاتی ہے, خصوصیت بھائی. تو خصوص کیا ہے, مصدر, اور اس کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا کر کیا بنا لیا گیا, صفت بنا لیا گیا. اور اسی طرح کبھی کبھار صفت کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا کر اسے مصدر بنا لیتے ہیں, جیسے فاعل, فاعل یہ صفت ہے اور اس کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا لیا, فاعلیت یعنی فاعل ہونا. یا جیسے ضارب, ضارب کا معنی پٹائی کرنے والا, یہ صفت ہے لیکن اسی کے آخر میں یا مشدد اور گولتا جو ملا دیتے ہیں اور یہ مصدر بن جاتا ہے. ضاربیت, ضاربیت کا کیا معنی, ضارب ہونا. اور اسی طرح مضروب, مضروب دیکھو صفت ہے, وہ شخص جس کی پٹائی کی گئی ہو لیکن اسی کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا کر اسے مصدر بنا لیتے ہیں, مضروبیت بھائی. مضروبیت کا کیا معنی, مضروب ہونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صفت کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ملا کر کیا بنا لیتے ہیں, مصدر. اسی طرح یہ یا مشدد اور گولتا کبھی نسبت کے لیے بھی جوڑ دیتے ہیں, جیسے لاہوریون, کیا مانا, لاہور والا, لاہور کی طرف منسوب. یا اسی طرح مؤنث کے لیے کہیں گے لاہوریتن, یعنی وہ مؤنث چیز جو لاہور کی طرف منسوب ہے. تو معلوم ہوا یہ یا مشدد اور گولتا مصدر بنانے کے لیے بھی لاتے ہیں اور یہ نسبت کرنے کے لیے بھی لاتے ہیں. ضاربیت کا کیا معنی, ضارب ہونا. اور اسی طرح لاہوریت ان کا کیا معنی, لاہور والی. دیکھو یہ یا مشدد اور گولتا مصدر بنانے کے لیے بھی اضافہ اس کا کرتے ہیں اور نسبت کرنے کے لیے بھی. तो यहां आया अला अलमिल फाइलियती, अलम किस माना में, अलामत के माना में, और फाइलियत के आखिर में या मुशद्दद और गोलता है, ये कौन सी है, ये मस्दर वाली या है या ये निस्बत वाली या है। तो साहिब जामी ने आगे बतला दिया ऐ अलामती कौन लिस्म फाइलन, ये कौन, कान यकून कौनन, ये मस्दर है भाई, मालूम हुआ ये याए मुशद्दद कौन सी है, मस्दर वाली है। फाइलियत का क्या माना, फाइल होना। इसका तर्जमा कैसे करते हैं, याद रखो वो जो निस्बत वाली या है ना, निस्बत वाली, उसका तर्जमा करते हैं मंसूबुन इला के साथ, लाहौरियुन, क्या माना, ये तो उर्दू में तर्जमा करें, अरबी में तर्जमा कैसे करेंगे, मंसूबुन इला लाहौर, देखो मंसूबुन और इला के साथ, अल बसरियो जी तर्जमा करें मंसूबुन इलल बसरा, बाकिस्तानीयुन जी तर्जमा करें मंसूबुन इला पाकिस्तान, तो मंसूबुन इला के साथ तर्जमा करते हैं अगर वो या निस्बत वाली हो, और अगर वो या मुशद्दद और गोलता मस्तर वाली हो तो फिर उसका तर्जमा कौन के साथ करते हैं, कान यकून कौनन, मसलन फाइलियत क्या तर्जमा करेंगे, अरबी में करें कौन शैई फाइलन, तवज्जो है, कैसे, फाइलियत था लफ्ज, क्या था, आप इसका तर्जमा कौन के साथ करना है, कैसे करेंगे, कौन शय दरमियान में ले आए आप, एक शय का होना, फाइलियत का क्या माना, एक शय का फाइल होना, मजरूबियत का क्या माना, एक शय का मजरूब होना, तो फाइलियत का तर्जमा करें अरबी में कौन के साथ, कौन शय, और काना या कून, काना क्या अमल करता है, अपने इसम को रफा देता है और खबर को नसब देता है, यहां पर कौन की इजाफत शय की तरफ तो इजाफत हो गई और आगे खबर उसी तरह मंसूब आ जाएगी, कौन शय फाइलियत, किस लफ्ज का हम तर्जमा कर रहे हैं, फाइलियत, इसी को खबर बनाना है, मंसूब बनाकर इसको ले आएंगे जी, कीजिए फाइलियत, कौन शैई फाइलन, या खत्म कर देंगे, या मुशद्दद और गोलता खत्म कर देंगे क्योंकि ये कौन का लफ्ज उसी की वजह से हम लाए हैं जी, और कीजिए जारबियत का तर्जमा करें भाई, कौन शैई जारिबन, या मुशद्दद और गोलता आप खत्म कर देनी है, मजरूबियत का तर्जमा करें कौन शय मजरूबन, बात समझ में आ गई, तो यहां पर भी फाइलियत लफ्ज आया था तो साहिब जामी ने उसकी तफसीर किसके साथ की, कौन इस्म फाइलन, उस शय की जगह क्या ले आए, इसम ले आए, क्योंकि बात किसकी चल रही है, इसम की बहस चल रही है, इसम का फाइल होना जी, यहां तक बात समझ में आ गई, फिर दोहराइए जरा, कहते हैं वह मश्ता मला आई इसमु निश्ता मला अला अलमिल फाइलियति ऐ अलामती कौन इस्म फाइलन, ऐ अलामती, अलामत के लफ्ज लाकर क्या बतलाना चाहते हैं कि जो मतन में अलम का लफ्ज आया ये किस माना में है, अलामत के माना में है, और अलफाइलियत की तफसीर किसके साथ की, कौन इस्म फाइलन, क्या बतलाना चाहते हैं कि ये याए मुशद्दद और गोलता जो है ये निस्बत वाली नहीं है बल्कि मस्दर वाली है, बात समझ में आ गई, ऐ अलामती कौन इस्म फाइलन, यानी इसम के फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, मरफू वो है जो इसम के फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, भाई फाइल की अलामत क्या है, कहते हैं वही जम्मतु वल वावु वल अलिफु, जम्मा है वाव है और अलिफ है, जम्मा किसके अंदर आता है, मुफरद मुनसरिफ सही वगैरह, देखो जैदुन गुलामुन वगैरह, इसमें रफा जम्मा के साथ आएगा, और वाव जमा मुजक्कर सालिम, और अस्माए सिता मुकब्बरा मुहदा मुजाफा इला गैरिया इल मुतकल्लिम, और अलिफ के साथ रफा किस में आएगा, तस्निया के अंदर आएगा भाई, कहते हैं वल मुरादु बिश्तिमाली लिस्मी अलैहा, अच्छा भाई यहां एक सवाल पैदा होता है, सवाल ये कि मातिन ने क्या कहा साहिब काफिया ने, हुआ मश्तमला अला अलमिल फाइलियती, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। भाई मुख्तसर कलाम कह देते, यूं कह देते मरफू वो है जो रफा पर मुश्तमिल हो, फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। इसके बजाय क्या कह देते हैं, मरफू क्या है जो रफा पर मुश्तमिल हो। कहते हैं भाई अगर ये कह देते तो फिर तो दौर लाजिम आता, भाई मरफू को समझने के लिए रफा का जानना जरूरी होता और रफा को जानने के लिए मरफू का जानना जरूरी होता, इससे एक भी चीज का पता नहीं चलता। मसलन आपसे कोई पूछे जैद का घर कहां है, आप कहते हैं अमर के घर के सामने, फिर पूछा अमर का घर कहां है, कहा जैद के घर के सामने। अब देखो इसमें एक भी चीज का पता नहीं चलेगा। कैसे, मरफू किसे कहते हैं जो रफा पर मुश्तमिल हो, मरफू किसे कहते हैं जो रफा पर मुश्तमिल हो, और रफा किसे कहते हैं जो मरफू पर आए, जो मरफू पर आए उसको रफा कहते हैं। भाई मरफू किसे कहते हैं जिस पर रफा आए, और रफा किसे कहते हैं जो मरफू पर आए। देखा एक भी चीज का पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए साहिब काफिया ने मरफू की तारीफ क्या की, हुआ मश्तमला अला आलमिल फाइलियत कहा, मश्तमला अला रफा नहीं कहा। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए कहते हैं वल मुरादु बिश्तिमालिल इस्मी अलैहा अन यकूना मौसूफन बिहा लफ्जन औ तकदीरन औ महलन। भाई इन्होंने कहा, फिर मतन देखो, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, मरफू वो है जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो। भाई ये मुश्तमिल होने का क्या माना, मुश्तमिल होने की तो कई सूरतें हैं। मुश्तमिल होना कुल जो है जुज पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह कभी जर्फ जो है वो मजरूफ पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह जुलहाल जो है वो हाल पर मुश्तमिल होता है, और इसी तरह मौसूफ जो है वो सिफत पर मुश्तमिल होता है। मुश्तमिल होने की तो कई सूरतें हैं, यहां कौन सी सूरत मुराद है, तवज्जो है। इश्तेमाल की कितनी सूरतें, चार सूरतें। नंबर एक इश्तेमाल उल कुल अलल जुज, दोहराए जुबान से, इश्तेमाल उल कुल अलल जुज के कुल मुश्तमिल होता है किस पर, जुज पर। और इसी तरह इश्तेमाल उल जर्फ अलल मजरूफ, जर्फ जो है मजरूफ पर मुश्तमिल होता है। तीसरा है इश्तेमाल उल मौसूफी अलल सिफत, मौसूफ जो है वो सिफत पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरह इश्तेमाल उल जिलहाल अलल हाल के, जुलहाल जो है वो हाल पर मुश्तमिल होता है। मसलन देखो आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मसलन मैं कहता हूं ये चाय खालिस दूध पर मुश्तमिल है। देखो मुश्तमिल का लफ्ज आया, क्या माना, खालिस दूध इसका जुज है, खालिस दूध इसका जुज है। देखा कुल जो है जुज पर मुश्तमिल होता है। तो यहां पर भी जब मैंने इस्तेमाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या बतलाना चाहता हूं कि एक चीज दूसरी चीज का जुज है। या मसलन मैं आपसे कहता हूं ये किताब 10 अबवाब पर मुश्तमिल है, आप बोलते हैं या नहीं उर्दू में, ये किताब 10 अबवाब पर मुश्तमिल है, क्या माना, ये 10 अबवाब इसका जुज है और ये किताब कुल है। भाई बात समझ में। इसी तरह मसलन बर्तन में एक चीज होती है, आपसे आप दूसरे को बतलाते हैं कि यह बर्तन शहद पर मुश्तमिल है, यह बर्तन शहद पर मुश्तमिल है, क्या माना, यह शहद इस बर्तन का जुज है या इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। देखो ये इस्तेमाल उल कुल अलल जुज नहीं है, बल्कि ये इस्तेमाल उल जर्फ अलल मजरूफ की कबील से है, एक चीज दूसरी चीज के अंदर है। भाई और तीसरी किस्म इस्तेमाल उल मौसूफ अला सिफत, मौसूफ जो है वो सिफत पर मुश्तमिल होता है। सिफत मसलन मैंने कहा जैद बहादुर आदमी है, तो अब अरबी में ये, उर्दू में तो इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अरबी में कहते हैं कि ये जो मौसूफ है इस सिफत पर मुश्तमिल है, यानी ये चीज इसकी सिफत है, ये बहादुरी जो है जैद की सिफत है। भाई बात समझ में आ रही, मौसूफ क्या होता है, सिफत पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह जुलहाल के बारे में भी अरबी में कहते हैं कि जुलहाल जो है वो हाल पर मुश्तमिल होता है। जा अनी जैदुन राकिबन, आया मेरे पास जैद इस हाल में कि वो सवार था, اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب دیکھو زید ہے ذوالحال اور یہ سوار ہونا یہ کیا ہے اس کی حالت. تو ذوالحال جو ہے وہ حال پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی حال اس کی صفت ہوتا ہے, حال اس کی صفت ہوتا ہے. تو استعمال کی کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار صورتیں. کبھی استعمال الکل علی الجز, کبھی استعمال الموصوف علی الصفت, کبھی استعمال الظرف علی المظروف, اور کبھی استعمال ذوالحال علی الحال. بھائی تو یہاں کون سا استعمال مراد ہے؟ تو آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ یہاں استعمال سے مراد استعمال الموصوف علی الصفت. کیا مانا بھئی؟ دیکھو مرفوع فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے. توجہ ہے, مرفوع فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی وہ فاعل ہونے کی علامت اس کی صفت ہوتی ہے. جانی زیدن, یہ رفع کیا ہے؟ زید کی صفت ہے. جانی مسلمون, یہ واو کیا ہے؟ مسلمون کی صفت ہے. تو جس طرح موصوف صفت پر مشتمل ہوتا ہے, اسی طرح جو مرفوع ہوتا ہے یہ فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی یہ اس کی صفت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والمراد باشتمال الاسم علیہا, اور اسم کے اس پر مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ یکون موصوفا بہا, کہ اسم جو ہے وہ اس فاعل ہونے کی علامت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے, لفظا او تقدیرا او محلا. اور یہ موصوف ہونا کبھی لفظا ہوگا, کبھی تقدیرا ہوگا, اور کبھی محلا ہوگا. میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اسم دو قسم پر ہے, یا وہ معرب ہوگا یا مبنی. معرب جو ہے اس پر اعراب لفظاً آتا ہے اور کبھی تقدیراً آتا ہے, جبکہ مبنی پر اعراب جو ہے محلاً آتا ہے. اعراب لفظاً کا کیا معنی؟ کہ اس اعراب پر ہم باقاعدہ تلفظ کرتے ہیں. جاءنی زیدن, رأیتو زیدن, مررتو بھی زیدن. دیکھو میرے تلفظ سے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ میں رفع پڑھ رہا ہوں, نصب یا جر. زیدن میں نے کیا پڑھا؟ رفع. زیدن کیا پڑھا میں نے؟ نصب. اور زیدن میں نے کیا پڑھا؟ جر. دیکھا تلفظ سے ہی پتا چل رہا ہے. تو یہ ہے اعراب لفظن. اور کبھی تلفظ سے پتا نہیں چلے گا, جیسے جاءنی موسیٰ, رأیتو موسیٰ, مررتو بھی موسیٰ. اب یہ تینوں حالتوں میں یہ یکساں ہے, اس تلفظ کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا. تو کیا کہیں گے؟ کہ یہ مرفوع ہے تقدیرن. یہ تقدیرن, قدر یقدر, تقدیر کا معنی فرض کر لینا, کہ فرض کر لو اس پر رفع آ گیا ہے, یا فرض کر لو اس پر نصب آ گیا ہے, یا فرض کر لو کہ اس پر جر آ گیا ہے. اور جبکہ مبنی کے اندر اعراب محلن آئے گا, مثلا ہا اولائی, جا ہا اولائی, رأیتو ہا اولائی, مررتو بہا اولائی. دیکھو تینوں صورتوں میں رفع نصب جر, تینوں صورتوں میں ہا اولائی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اس کے آخر میں حمزہ ہے, حمزہ کے نیچے زیر ہے, اور ہر حال میں وہ زیر ہی اسی طرح رہتی ہے. تو یہ جو ہا اولائی ہے یہ چونکہ مبنی ہے اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا, تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یا یہ محلن مرفوع ہے, یا محلن منصوب ہے, یا محلن مجرور ہے. بھئی دیکھو معرب کے اندر اعراب لفظاً آتا ہے, یعنی باقاعدہ تلفظ ہوتا ہے اس پر, یا تقدیراً آتا ہے, جبکہ مبنی کے اندر محلاً. سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرب کا آخر جب نہیں بدلتا تو آپ وہاں کہتے ہیں اعراب تقدیراً ہے, اور مبنی کا آخر بھی نہیں بدلتا وہاں آپ تقدیراً نہیں کہتے بلکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ محلاً کہتے ہیں. یہ فرق کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ معرب جو ہے, معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے. تو لہذا اب یہاں پر جاء موسیٰ, رأیتو موسیٰ, مررتو بھی موسیٰ, اب اس کا آخر تو نہیں بدل رہا, تو یہ معرب کی تعریف سے نکل رہا تھا, تو لہذا کیا کہا گیا کہ فرض کر لو اس کا آخر بدل رہا ہے, کیونکہ کوئی اسم ویسے مبنی نہیں بنتا جب تک اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے. آپ جانتے ہیں مبنی الاصل تین چیزیں ہیں, کون کون سی؟ فعل ماضی, فعل امر, اور تمام حروف. دیکھو ان میں سے اسم ایک بھی نہیں ہے. فعل ماضی, فعل امر, اور تمام حروف. इनमें से एक भी इसम नहीं है। हां जिस इसम की इनके साथ मुशाबिहत आ जाएगी वो इसम भी क्या बन जाएगा, मबनी बन जाएगा। तो मबनी कोई इसम वैसे नहीं बनता, उसकी मबनीउल असल के साथ मुशाबहत जरूरी है। तो मुअरब जो है उसका आखिर बदलता है। अगर अवामिल के बदलने के बावजूद उसका आखिर नहीं बदल रहा, मालूम हुआ वहां कोई मानेअ है, कोई रुकावट है। अगर वो माने और रुकावट न होती तो फिर उसका आखिर भी बदलता। जैसे जा मूसा रई तो मूसा मरर तो भी मूसा, यहां इसके आखिर में अलिफ मकसूरा आ रहा है भाई, और अलिफ तो हरकत को कबूल करता ही नहीं, तो यहां इस वजह से माने आ गया, लिहाजा हमें कहना पड़ा कि फर्ज कर लो बदल रहा है। तो इस पर रफा भी तकदीर कदर यु तकदीर, तकदीर का क्या माना, फर्ज करना। तो फर्ज कर लो जा अनी मूसा, फर्ज कर लो रफा आ गया, तकदीरन ये मरफू है, रई तो मूसा तकदीरन मनसूब है, मरर तो भी मूसा तकदीरन मजरूर है। या जैसे इसमें मनकूस है भाई, इसमें मनकूस जा अल काजी रई तुल काजिया मरर तो बिल काजी, यहां देखो नसब आ गया क्योंकि नसब या पर खफीफ है लेकिन या पर जम्मा और कसरा सकील है, इसीलिए जा अल काजी के अंदर रफा भी तकदीरन है और जर भी तकदीरन है, अलबत्ता नसब जो है लफजन आता है। तो मुअरब के अंदर एराब पर तलफुज न हो सके तो एराब को कहते हैं तकदीरन, क्योंकि वहां कोई मानेअ होता है, कोई रुकावट होती है, जबकि मबनी के अंदर कोई रुकावट होना जरूरी नहीं। जैसे हा उलाई, हाँ उलाई के आखिर में देखो हमजा है और हमजा पर तो रफा भी आ सकता है, नसब भी आ सकता है, जर भी आ सकता है। शय उन शय अन, देखो शय उन के आखिर में हमजा है, शय उन शय अन शय इन, देखो हमजा पर तीनों तरह की हरकतें आ सकती हैं या नहीं, और हा उलाई के आखिर में भी हमजा है, इस पर भी एराब आना चाहिए, लेकिन इस पर एराब जाहिर नहीं होता। कोई मानेअ भी नहीं फिर भी एराब जाहिर नहीं हो रहा क्योंकि यह क्या है, मबनी है भाई। बात समझ में आ रही? तो गोया एराब तीन तरह आ सकता है, कभी लफजन आएगा, कभी तकदीरन और कभी महलन। लफजन और तकदीरन किस में आएगा, मुअरब में। लफजन और तकदीरन किस में आएगा, मुअरब में, और महलन किस में आएगा, मबनी के अंदर आएगा। तो इसीलिए कहा केवल मुराद बिश्तिमाल इस्म अलैहा, और इसम के उस फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल होने से मुराद यह है कि यकून मौसूफन बिहा, कि वो इसम जो है उस अलामत के साथ मौसूफ हो रहा हो, लफजन औ तकदीरन औ महलन, या मौसूफ होगा लफजन या तकदीरन या महलन भाई। वला शक का नलिस मौसूफुन बिर्रफ़ुल महल्ली, यहां से साहिब जामी रद कर रहे हैं शारह हिंदी का। शारह हिंदी एक बहुत बड़े नहवी गुजरे हैं और ये हिंदुस्तान के इलाके के थे, इसलिए शारह हिंदी के नाम से मशहूर हैं भाई, और इन्होंने भी काफिया की शरह लिखी। अलबत्ता उन्होंने अपनी शरह के अंदर रफा लफजन और तकदीरन को तो जिक्र किया है, रफ़ महल्ली को उन्होंने जिक्र नहीं किया। शारह जामी ने तो बतला दिया कि रफा लफजन भी हो सकता है, तकदीरन भी हो सकता है और महलन भी, लेकिन शारह हिंदी जो है उन्होंने रफा लफजन और रफा तकदीरन को तो जिक्र किया है और रफ़ महल्ली का उन्होंने इनकार किया है, उसको जिक्र नहीं किया। शारह जामी आपको बतलाएंगे कि नहीं भाई, रफ़ महल्ली से इनकार की गुंजाइश नहीं, रफ़ महल्लन भी आपको मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या कहा, मरफू किसे कहते हैं, जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, जो फाइल होने की अलामत पर मुश्तमिल हो, और मरफू जो है वो सिर्फ मौरब वाके होता है या मबनी भी वाके होता है। मसलन मैं कहता हूं जा हा उलाई, देखो अब हा उलाई जो है ये मरफू है भाई, ये जा के लिए फाइल बन रहा है, तो मरफू जो है वो मौरब के साथ साथ मबनी भी वाके होता है, और इसी तरह बल्कि फेल के अंदर आप देख लें जराबा जराबा जराबू पू, वो सारी गर्दान में आप देख लें भाई, सब के साथ फाइल की जमीर मुत्तसिल जुड़ी हुई है, और जमीर क्या है, मबनियात में से, जब मबनियात में से है और है तो फाइल बन तो फाइल रही है, तो क्या कहना पड़ेगा, ये मरफू है महलन, तो रफ़ महल्ली से कहते हैं इनकार की गुंजाइश नहीं है, रफ़ महल्ली کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں ولا شک کا نل اسم موصوف بالرفع المحلی, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسم جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے رفع محلی کے ساتھ. اس معنی رفع المحلی, بھائی اسم موصوف ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ رفع محلی کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. بھائی رفع محلی کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں رفع محلی کا معنی یہ ہے, جیسے مثلا میں نے کہا جا ہا اولائی, جا جا فعل, ہا اولائی اس کے لیے فاعل ہے, اور یہاں اس ہا اولائی پر نہ تو لفظاً رفع آ رہا ہے اور نہ تقدیراً رفع ہے, ہاں محلاً رفع ہے. محل رفع محلی کا کیا معنی؟ یعنی اس جگہ اگر مبنی کے بجائے کس کو اٹھا کر رکھ دیا جائے, کسی معرب کو رکھ دیا جائے, تو اس پر رفع لفظاً یا تقدیراً آ جائے گا. رفع محلی کا کیا معنی؟ کہ یہ جگہ رفع والی ہے, اگر اس جگہ کوئی معرب آ جائے تو اس پر رفع لفظی یا رفع تقدیری آ جائے گا. بھائی کہتے ہیں ولا شک کا ان الاسم موصوف بالرفع المحلی, اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسم جو ہے وہ رفع محلی کے ساتھ موصوف ہوتا ہے. اس معنی رفع المحلی, کیونکہ رفع محلی کا معنی یہ ہے کہ انہ فی محل لو کان سمہ معرب, کہ اگر اس جگہ میں, محل کا کیا معنی؟ جگہ, اس جگہ میں لو کان سمہ معرب, اگر وہاں کوئی معرب ہوتا. اس جا ان جا ہا اولائی, یہاں اولائی کی جگہ اگر کوئی معرب ہوتا, لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا, تو وہ مرفوع ہوتا لفظا یا تقدیرا. فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی, تو کیسے خاص ہو سکتا ہے؟ فکیف یختص بھی پڑھ سکتے ہیں اور یختص بھی, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی. فکیف یختص الرفع, تو کیسے رفع خاص ہو سکتا ہے؟ بما عدا الرفع المحلی, رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ. عبارت نظر ہے کیسے رفع, بھائی دیکھیے نا ادھر, رفع کی کل کتنی صورتیں بتائیں صاحب جامی نے؟ تین, یا لفظاً یا تقدیراً یا محلاً. اچھا ذرا محلاً کو نکال دو, باقی دو کیا رہ گئے؟ لفظاً اور تقدیراً. بھائی یہ لفظاً اور تقدیراً کے ساتھ رفع کیسے خاص ہو سکتا ہے؟ یہ رفع اس رفع کے مقام میں تو مبنی بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ کبھی کبھار تو, کبھی کبھار مبنی بھی تو اس رفع کے مقام میں آ جاتا ہے, تو وہاں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس پر کون سا رفع ہے, رفع محلی ہے. اگر اس جگہ کوئی معرب آ جاتا تو اس پر لفظاً یا تقدیراً رفع آ جاتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی, تو رفع کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ؟ رفع محلی کے علاوہ کیا معنی؟ لفظاً یا تقدیراً, یعنی صرف معرب کے ساتھ خاص ہے, مبنی کے ساتھ پر آتا ہی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی, تو رفع کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ؟ وہ ہوا یبحث مثلا, اور یہ مصنف یا جو نحوی جو ہے مثال کے طور پر وہ بحث کرتا ہے, عن احوال الفاعل, یہ فاعل کے احوال سے بھی بحث کرتے ہیں. اذا کان مزمرا متصلا, جبکہ فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو. زارا بتا, اس کے اندر یہ تا کیا ہے؟ فاعل ہے, تو ضمیر متصل ہے, تو اس میں ماننا پڑے گا کون سا رفع ہے, رفع محلی ماننا پڑے گا آپ کو. وَهُوَ يَبْحَثُ مَثَلًا عَنْ أَحْوَالِ الْفَاعِلِ, یہ ضمیر اس کو لوٹا لیں نحوی کی طرف یا مصنف کو لوٹا لیں, یعنی صاحب کافیہ کو. کہتے ہیں وَهُوَ يَبْحَثُ مَثَلًا عَنْ أَحْوَالِ الْفَاعِلِ, اور یہ یعنی صاحب کافیہ مثال کے طور پر فاعل کے احوال سے بحث کرتے ہیں. اذا کان مزمرا متصلا, جبکہ وہ فاعل ضمیر متصل ہو, کما سیجی, جیسے کہ عن قریب آ جائے گا, آگے ضمیروں کی بحث آ جائے گی, وہاں آپ کو وہ بتلائیں گے کہ یہ ضمیر کیا بن رہی ہے, یہ فاعل ہے, جب فاعل ہے تو اس پر محلا رفع ماننا پڑے گا آپ کو. یہاں ایک عبارت کی ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں, یہاں آیا بما عدا الرفع المحلی, یاد رکھو یہ عدا اور خلا, توجہ ہے, عدا اور خلا, یہ جر بھی دیتے ہیں اور یہ کبھی نصب بھی دیتے ہیں. جب جر دیں گے تو یہ حروف جارہ میں سے ہیں, اور کبھی کبھار یہ نصب دیتے ہیں یعنی یہ فیل ہوتے ہیں اور ما بعد ان کا مفعول بھی ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. توجہ ہے؟ تو عدا اور خلا کبھی کیا کرتے ہیں؟ جر, اور کبھی نصب. اور ایک نشانی ان کی یاد رکھنا, یہ جب جملے کے شروع میں آ جائیں, بالکل کلام کے شروع میں آ جائے خلا یا عدا, یا ان سے ما قبل میں ما آ جائے, ما یہ ما مصدریہ ہے, تو پھر یہ متعین ہو جائیں گے, پھر یہ فعل ہی ہیں, پھر آگے ان کے منصوب آئے گا. کیا آئے گا؟ یہ کبھی جر دیتے ہیں اور کبھی نصب. نصب کی دو علامتیں میں نے بتلا دیں, کب؟ جب یہ کلام کے شروع میں آ جائیں, یا ان سے ما قبل کیا آ جائے؟ ما آ جائے. یہ ما چونکہ مصدریہ ہے, اور ما مصدریہ صرف فعل پر داخل ہوتا ہے, تو اس صورت میں یہ فعل ہی ہوں گے اور آگے نصب دیں گے. تو یہاں پر بھی دیکھو, بیما عدا, عدا سے پہلے کیا آیا؟ ما آ گیا. لہذا اب الرفع المحل مجرور نہیں پڑھنا, بلکہ اب یہ کیا ہے؟ فعل ہے. توجہ ہے؟ اس سے پہلے ما آ گیا, اب یہ فعل ہے. تو بیما عدا رفع المحلیہ, اس طرح پڑھنا عبارت کو. یہ استثناء کے لیے آتے ہیں, رفع محلی کے علاوہ, رفع محلی کے علاوہ. تو فکیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلیہ, تو رفع کیسے رفع محلی کے علاوہ کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی. اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا, یہ عدا اور خلا یہ کبھی کبھی فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, پھر اس صورت میں آگے یہ نصب دیں گے, اور کبھی یہ حروف جارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پھر یہ جر دیں گے. تو عدا, خلا اور اسی طرح حاشا, حاشا بھی جر دیتا ہے. اسی طرح لعلہ, لعلہ کس میں سے ہے؟ لعلہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے, لیکن یہ کبھی کبھی یہ بھی جر دیتا ہے. اسی طرح لولا, لولا یہ بھی کبھی کبھی جر دیتا ہے. تو یہ خلا, عدا, حاشا, لعلہ, لولا, یہ جب جر دیں گے تو اس وقت یہ کسی سے متعلق نہیں ہوں گے. حروف جارہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے متعلق ہوتے ہیں نا, ان کے لیے متعلق چاہیے. لیکن جس وقت یہ خلا, عدا, حاشا, لعلہ, لولا, یہ کبھی کبھی جر دینے کے لیے بھی آئیں گے, اور جب یہ جر دینے کے لیے آئیں گے تو ان کو کسی سے متعلق نہیں کرنا, یہ کسی سے متعلق نہیں ہوں گے. جی, سبق سمجھ میں آ گیا, سارا حل ہو گیا. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.